हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दोपहर का वक्त हो रहा था। माधुरी और धृति के बीच सब ठीक हो गया था, इसलिए धृति भी कुछ हद तक नॉर्मल हो गई थी। कबीर को तो बस अर्णव की खुशी चाहिए थी, इसलिए अब उसे धृति से कोई शिकायत नहीं थी। धृति ने खुद ही अर्णव के लिए लंच बनाया था, बाकी सबके लिए ऑर्डर किया गया था। लंच के बाद धृति ने ही अर्णव को उसकी दवाइयां दी। हालांकि जब तक अर्णव हॉस्पिटल में रहा, धृति उसके वार्ड के अंदर नहीं गई थी, पर जानकारी सारी रखती थी। अर्णव ये देखकर हैरान भी था और उसकी केयर से मन ही मन खुश भी बहुत था। इस वक्त अर्णव बेड पर टाइम पास के लिए कोई मैगजीन पढ़ रहा था और धृति साइड में लगे काउच पर बैठी अपने ख्यालों में गुम थी। अर्णव कुछ पल खामोशी से उसे निहारता रहा, फिर उसने उस कमरे के पसरे सन्नाटे को चीरते हुए धृति को पुकारा। धृति? जी? धृति हड़बड़ाते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई और आंखों की पुतलियां फैलाई हैरानी से उसे देखने लगी। इधर आओ मेरे पास। अर्णव ने हाथ बढ़ाते हुए नरमी से उसे आने का इशारा किया। धृति उसके पास जाने के बजाय उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगी। आओ ना यार, इतना क्या सोच रही हो? पति हूं तुम्हारा, क्या अपनी बीवी को अपने पास भी नहीं बुला सकता? और अगर तुम ये सोचकर घबरा रही हो कि मैं क्या करूंगा, तो बेफिक्र रहो, इस टूटी फूटी हालत में मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अर्णव ने भारी अफसोस जाहिर करते हुए आखिरी की बात कही। धृति तो फटी आंखों से हैरान परेशान से उसे देखने लगी। अर्णव ने भौं हौंचकाई तो धृति ने झट से सर हिलाया और अपनी बढ़ी धड़कनों को समेटते हुए उसकी ओर बढ़ गई। अर्णव ने उसकी बाँह थामते हुए उसे अपने पास बिठा लिया और उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए बोला, धृति वो रिंग कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? रिंग का जिक्र होते ही धृति, जो अब तक उलझन भरी नजरों से अर्णव को देख रही थी, उसने अपनी हथेली को देखा। अर्णव की उंगलियां उसकी रिंग फिंगर पर ठहरी थीं। घर पर रखी है, पहनती क्यों नहीं हो? रखने के लिए पहनाई थी तुम्हें रिंग। अर्णव ने अब सख्त निगाहें उसकी ओर उठाई, जिससे धृति हड़बड़ा गई। नहीं, वो बहुत महंगी है, बस इसलिए उतार कर रखी थी। घर से अपना सामान मंगवा लो और वो रिंग कल से मुझे तुम्हारी इस खूबसूरत उंगली में नजर आनी चाहिए। अर्णव ने तो जैसे हुक्म चलाया था उस पर, धृति ने भी झट से सर हिलाते हुए उसके ऑर्डर को मान लिया था। अर्णव ने अब उसकी कोमल नाजुक हथेली को थामते हुए सवाल किया, धृति मृणाल से क्या रिश्ता है तुम्हारा? अर्णव के सवाल के कानों में पड़ते ही धृति के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके अर्णव को देखा। आप शक कर रहे हैं मुझ पर? अर्णव ने धृति के सवाल पर तुरंत ही एतराज जताया, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपनी गलतियां दोहराने की आदत नहीं है। जब तक तुम पर विश्वास नहीं किया था तब की बात अलग थी, पर जब से तुम्हें जाना है तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, शक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अर्णव के इस जवाब ने धृति को दिल की गहराई तक सुकून पहुंचाया था, पर चेहरे पर उसने गंभीर भाव बनाए रखे। अगर विश्वास है तो फिर ये सवाल क्यों? बस यूं ही, कुछ तुमसे मम्मा कहता है और उसे डैड इसलिए। अर्णव इतना कहकर चुप हो गया, शायद आगे अपनी बात कहने के लिए उसे उचित शब्द नहीं मिल रहे थे। पर धृति उसके अधूरे सवाल को और उलझन को बखूबी समझ चुकी थी। उसने सहजता से जवाब दिया, मृणाल माधुरी का रिलेटिव है, बहुत अच्छा इंसान है। जब मैं यहाँ आई थी तो उसने बिना मुझसे कोई सवाल किए बहुत साथ दिया था मेरा। यहाँ रहने का इंतजाम भी उसी ने करवाया था। इन बीते 3 सालों में उसने मेरी जिंदगी में एक सपोर्टिव पिलर का काम किया है, बहुत अच्छा दोस्त बन गया है मेरा। वो तो शायद पसंद भी करता है मुझे, पर कभी ये बात जाहिर नहीं की और ना ही अपनी लिमिट्स क्रॉस की। मुझे भी पसंद है वो, और उसके रूप में मुझे एक ऐसा दोस्त मिला है जो मुझसे बिना कोई सवाल जवाब किए बस मेरा साथ देता है, मुझे समझता है और संभालता भी है। बीते दिनों माधुरी ने मेरी ओर से मुंह फेर लिया था, मैं इतनी परेशान थी कि मुझे अपना ही होश नहीं था, तब उसी ने संभाला था मुझे, मेरा ख्याल रखा था। आज भी उसी ने मुझे हिम्मत दी थी आपसे बात करने की। वो बहुत अच्छा है और मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे बिना कोई एफर्ट किए इतना अच्छा और सपोर्टिव फ्रेंड मिला। धृति की बातों से साफ जाहिर था कि मृणाल उसकी लाइफ में बहुत खास अहमियत रखता है, पर अर्णव को इससे ना तो कोई एतराज था और ना ही परेशानी, क्योंकि ये जगह उसने खुद बनाई थी, या ये कहें कि कमाई थी। वाकई जिंदगी में ऐसे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं जो बिना कुछ जाने समझे सवाल किए बस हमारा साथ देते हैं। उनका जिंदगी में होना ऐसा होता है जैसे गाड़ी का स्टेपनी टायर। कार ड्राइवर को पता है कि अगर कोई टायर बीच में उसका साथ छोड़ता है तो स्टेपनी है, जिसके सहारे वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकता है।
वैसे ही जिंदगी में ये दोस्त होते हैं जो हमें एहसास दिलाते हैं कि चाहे जिंदगी किसी भी मुश्किल मोड़ पर आकर हमारा साथ क्यों ना छोड़ दे, पर वो हैं हमारे साथ हमें संभालने के लिए। सबको ऐसे दोस्त नहीं मिलते जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल जवाब के, बिना उन्हें जज किए बस उनका साथ देते हैं। धृति लकी थी कि उसे मृणाल के रूप में ऐसा दोस्त मिला, और अर्णव भी इस मामले में लकी था क्योंकि उसके पास कबीर था जिसने हर सिचुएशन में उसका साथ दिया है। कुश से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अर्णव के सवाल पर धृति ने बेफिक्री से जवाब दिया, मैं मम्मा हूं उसकी। ये मुमकिन नहीं है, अर्णव ने उसकी बात पर एतराज जताया, जिस पर धृति ने भौं हुचकाते हुए सवाल किया, क्यों मुमकिन नहीं है? क्या किसी बच्चे की माँ बनने के लिए उसे जन्म देना जरूरी है? प्यार और ममता से ये रिश्ता नहीं बुना जा सकता? क्या जो औरतें बच्चे अडॉप्ट करती हैं वो उनकी माँ नहीं कहलाती? उसके लिए खून का रिश्ता होना और खुद से बच्चे को जन्म देना नेसेसरी है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस जानना चाहता हूँ कि वो तुम्हें मम्मा और मृणाल को डैड क्यों कहता है? क्योंकि मैंने उसे माँ की ममता भरा आंचल दिया है और मृणाल ने उसे बाप का संरक्षण और प्यार। इतना कहकर धृति पल भर को ठहरी, फिर उसने आगे कहना शुरू किया। माधुरी की कजन सिस्टर की शादी मृणाल के बड़े भाई से हुई थी। करीब 2 साल पहले एक हादसे में मृणाल ने पूरे परिवार के साथ भैया भाभी को भी खो दिया था। बाकी सब तो मौके पर दम तोड़ गए थे, पर उसकी भाभी की सांसें चल रही थी और हैरानी की बात थी कि उनके अंदर जो मासूम पल रहा था वो भी सांसें ले रहा था। शायद उन्होंने इसलिए अपनी सांसों की डोर को थामा हुआ था ताकि अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सके। केस क्रिटिकल था, ऑपरेशन हुआ जिसमें बच्चा तो बच गया और उसकी भाभी ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। शायद उनके जीने की वजह खत्म हो गई थी। वो वक्त बहुत मुश्किल था मृणाल के लिए। एक साथ अपने पूरे परिवार को खोया था उसने, अंदर से बिल्कुल ही टूट गया था और उस पर एक मासूम बच्चे की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। माधुरी को बच्चे संभालने का एक्सपीरियंस नहीं था, मृणाल भी ज्यादा कुछ नहीं जानता था और उस वक्त उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। जब नर्स उस छोटे से बच्चे को लेकर आई तो उसे सबसे पहले मैंने अपनी बाहों में थामा था। उसका मासूम सा चेहरा देखकर मेरा दिल भर आया था। वो पल मुझे आज भी याद है और वो अनुभूतियां बेहद खास है मेरे लिए। उसी लम्हे से कुछ से मेरा अटूट रिश्ता जुड़ गया था। शुरू के कुछ दिन मैंने ही संभाला था उसे। बिन माँ के बच्चे को संभालना बेहद मुश्किल था। जब जब उसे देखती तो भगवान से बस एक ही शिकायत करती कि इस मासूम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जन्म के साथ ही उसके सर से माँ बाप का साया छिन गया। जवाब नहीं था, पर उसके साथ मेरा लगाव बढ़ता जा रहा था।
मृणाल ने बच्चे के लिए खुद को संभाला और अपने भाई भाभी की आखिरी निशानी को अपनी जीने की वजह बना ली। उसके चाचू से उसका डैड बन गया और जब कुश ने बोलना शुरू किया तो मेरे लिए उसके मुंह से मम्मा शब्द निकला। उस दिन से मैं उसकी मम्मा बन गई, क्योंकि सच बताकर उस मासूम का दिल नहीं दुखा सकती थी। खून का तो नहीं, पर दिल का बहुत गहरा रिश्ता है हमारा। मेरे बिना तो एक दिन नहीं रहता, पता नहीं आगे कैसे रहेगा। ये सब बताते हुए धृति के चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे, जिन्हें अर्णव बड़ी ही गहराई से ऑब्जर्व कर रहा था। उन शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को महसूस कर रहा था। अंत तक आते आते धृति कुछ उदास हो गई और उसकी ये उदासी अर्णव से देखी नहीं गई। तुम उदास क्यों हो गई? कुश को अपने साथ लेकर चलना, वहां उसके लिए नई मम्मा ढूंढ देना जो हमेशा उसके पास रहे, और तुम्हें भी मैं यहां लाता रहूंगा। अगर पॉसिबल होता तो मैं उसे अडॉप्ट ही कर लेता जिससे वो हमेशा तुम्हारे पास रहे, पर ये तो मुमकिन नहीं। पर इसमें उदास होने की तो कोई बात नहीं, फोन पर बात कर सकोगी तुम उससे, मिलने भी आते रहेंगे, जिससे कुछ से तुम्हारा रिश्ता वैसा ही रहेगा जैसा आज है, क्योंकि दिलों से जुड़े रिश्तों को स्थानों की दूरियां कभी कमजोर नहीं कर सकती। जानती हूँ, पर मुझे कुश की चिंता होती है। अभी तक उसके मन में माँ की छवि के रूप में मैं बसी हूँ। पता नहीं ये जगह वो किसी और को दे पाएगा या नहीं, और जो उसकी माँ बनकर उसकी ज़िंदगी में आएगी वो उसे वही ममता, दुलार और प्यार दे पाएगी या नहीं जो वो डिज़र्व करता है। धृति अब भी चिंतित थी और उसकी चिंता लाजमी थी, जिसे अर्णव भी बखूबी समझ रहा था। उसने प्यार से उसके बाल को छूकर उसे समझाया, इतनी टेंशन मत लो, हम मिलकर कुश के लिए एक बेहतरीन माँ ढूंढेंगे जो उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी कमी को पूरा कर सके। और कुश की चिंता मत करो, अभी वो छोटा है, समझाएंगे तो समझ जाएगा, और जब प्यार मिलेगा तो अपनी नई मम्मा को धीरे धीरे अपना भी लेगा। होप सो ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा, तुम परेशान मत हो, अर्णव ने उसे विश्वास दिलाना चाहा, जिस पर धृति बस सर हिलाकर रह गई। अर्णव ने कुछ पल सोचा, फिर धृति का मन बहलाने के लिए बात बदलते हुए बोला, धृति मैंने तो तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया, तो मुझसे कुछ नहीं पूछोगी? जैसे तुम्हारे बिना इन 3 सालों में मैंने क्या किया? तुम तो मुझे निहारिका से शादी करने को कहकर आई थी, तो उसका क्या हुआ? मेरी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की तो नहीं आई? अर्णव ने धृति का ध्यान भटकाया और धृति के मन में कई सवाल एक साथ कौंध गए। उसने झटके से सर उठाकर उसे देखा। निहारिका का क्या हुआ? वो आपसे प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी। आपकी फैमिली को भी वो बहुत पसंद थी। तो क्या मीरिया से अचानक घर छोड़कर जाने के बाद आपने उससे रिश्ता जोड़ लिया? एग्जैक्टली तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निहारिका की मुझे लेकर जो भी फीलिंग्स थी वो एक तरफा थी। मैं तुम्हें चाहता था। तुम मुझसे दूर भले ही थीं पर मेरी वाइफ थीं, तो उससे शादी कैसे कर लेता मैं? वो पहले भी मेरी दोस्त थी और आज भी सिर्फ दोस्त है। तुम तो अपने पति को उसे सौंप कर आई थी, पर मैं नहीं बहका और 3 साल तक तुम्हारा इंतजार किया। अगर अब भी तुम नहीं मिलती तो आगे भी इंतजार करता, पर जो जगह तुम्हारी थी वो किसी और को कभी नहीं देता, कभी भी नहीं। अर्णव ने संजीदगी से दृढ़ता भरे अंदाज में जवाब दिया, जिसे सुनकर धृति के मन में सुकून सा उतरा। पर अगले ही पल वो फिर बेचैनी से पूछ बैठी, 3 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मैं आपके पास नहीं थी, आप वहां तन्हा और अकेले थे। आप तो इतने हैंडसम हैं, बहुत सी लड़कियां फिदा रहती हैं आप पर। क्या आपकी जिंदगी में मेरे अलावा और भी कोई लड़की आई थी इन बीते 3 सालों में? किसी को आपने अपनी तन्हाई का साथी बनाया था? बनाया तो था, अब 3 साल अकेले तन्हा कैसे काटता? अर्णव का ये जवाब सुनकर धृति की आंखों की पुतलियां हैरत से फैल गईं, जबकि अर्णव एकदम बेफिक्र नजर आ रहा था और धृति के रिएक्शन को देखकर मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। टू बी कंटिन्यूड। अर्णव के इस जवाब का क्या असर होगा और धृति कैसे रिएक्ट करेगी?